मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले माला से, हसन फकीर का जन्नत में बेसरा होगा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن جو کہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نعتیہ ذوق نعت کے کلاموں کی تشریحات پر مشتمل ہے۔ ذوق نعت یہ مولانا حسن رضا خان کے کلاموں کا مجموعہ ہے، دیوان ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پبلش کر دیا ہے اور دعوت اسلامی .net سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصراً آپ کو چند اشعار شہنشاہ سخن کے تشریح کے ساتھ بھی پیش کیے جائیں اور طرز میں بھی آپ کو سنائے جائیں، تاکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے بزرگان دین کا ذوق و شوق کیسا تھا، محبت مصطفیٰ، عشق رسول میں یہ کیسے سرشار تھے اور ان کی باتوں میں کیا تھا، ان کی نعتوں میں کیا باتیں یہ کہہ گئے۔ آج جو پیش نظر ہمارے کلام ہے وہ بھی بڑا خوبصورت نعتیہ کلام ہے۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ اس میں تقریباً 19 اشعار ہیں اور ہم دو پروگرامز میں انشاءاللہ اس کلام کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے، طرز میں بھی سنائیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی میننگز بھی آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے اور اشعار بھی آپ اسکرین پر انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آئیے کچھ اشعار آپ کو پہلے طرز میں سنائیں، آپ انہیں ذوق و شوق سے سماعت کیجئے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو ان کی وضاحت بھی آپ کو پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، جو اے گل جامائے ہستی تیری پوشاک ہو جاتا، تو خارے نیستی سے کیوں الجھ کے چاک ہو جاتا، جو وہ ابر کرم پھر آب رو خاک ہو جاتا، تو اس کے دو ہی جھینٹوں میں زمانہ پاک ہو جاتا، ہوائیں دامن رنگی جو ویرانے میں آ جاتی، لباس گل میں ظاہر ہر خس و خاشاک ہو جاتا، لب جا بخش کی قربت حیات جاویداں دیتی، اگر ڈورا نفس کا ریشہ مسواک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا۔
آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے طرز میں 5 شعر سماعت کیے، اب آئیے ان کی کچھ وضاحت آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ مطلع ہے اس کلام کا، مطلع یعنی پہلا شعر جس سے کلام شروع ہوتا ہے، بہت خوبصورت مطلع ہے۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، इस कलाम में आपको कुछ ना कुछ तमन्नाएं, कुछ तसव्वुरात मिलेंगे कि क्या कहने वाला चाह रहा है, कुछ ना कुछ चाह रहा है कि काश ये हो जाता, यूं हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये कुछ तमन्नाएं होती हैं जो बंदे के दिल में होती हैं, आरजुएं होती हैं। वो जानता है कि ऐसा जाहिरी तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी तमन्ना का फल बाज़ औक़ात दूसरी सूरत में उसे मिल जाता है। और इश्क़ मुस्तफ़ा में कई तमन्नाएं, आरजुएं आशिकों की रहती हैं, और जितना बड़ा आशिक होगा तमन्नाएं और आरजुएं भी कुछ उसी तरह की होती हैं। तो कहते हैं कि अगर किस्मत से मैं उनकी गली में खाक हो जाता, गमे कौनैन का सारा बखेड़ा पाक हो जाता। अब आप देखें, इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरी किस्मत मेरा साथ देती, मेरी किस्मत बड़ी होती, खुश नसीबी से मैं इंसान नहीं होता बल्कि मदीने की खाक बन जाता, मदीने की धूल बन जाता, गुबारे मदीना बन जाता, तो क्या बात होती मेरी कि गमे कौनैन का सारा बखेड़ा, बखेड़ा कहते हैं झगड़े को, झंझाल को, अंदेशे को, उलझाव को, दुश्वारी को, तरद्दुत को, फसाद और हंगामा, ये सारे मानी में बखेड़ा लिया जा सकता है। तो ये जिंदगी का एक अपना बखेड़ा है, जैसे कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने कहते हैं ना अपने एक शेर में कि फिक्र माश बदबला हौल माद जा गुजा, फिक्र माश बदबला हौल माद जा गुजा। जिंदगी में फिक्र माश है, पेट लगा है, बच्चों के मामलात हैं, वालिदैन के हुकूक हैं, बीवी के हुकूक हैं, बहुत सारे मामलात हैं, फराइज हैं, हमें अदा करने हैं, एक इम्तिहान गाह में हैं हम। फिर हौल माद, जहाँ लौट के जाना है उसका अलग हौल है, उसकी अलग टेंशन और खौफ है, क्या होगा हमारा। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों, लाखों बला में ये फंस गई गोया। तो जब एक बंदे को अल्लाह पाक की पकड़ का खौफ होता है तो वो इस तरह की बात कभी करता है। ये साहबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी इस तरह की बातें हमें मिलती हैं। तो एक आशिक तमन्ना कर रहा है कि काश मैं मदीने की खाक हो जाता तो मेरी जिंदगी का सारा फसाद और झगड़ा और जंजाल जो है वो खत्म हो जाता। और इस शेर को यूं भी कहा जा सकता है कि अगर किस्मत से मुझे मदीने में मौत आ जाती तो जाहिर है कि मरने के बाद भी नॉर्मली खाक हो जाना ही तसव्वुर किया जाता है कि मरने के बाद मिट्टी में बंदा मिल जाता है, तो मैं भी मदीने में मरकर मदीने की पाकीज़ा मिट्टी में मिलकर उसी की खाक का हिस्सा बन जाता तो भी फिर गमे कौनैन का सारा बखेड़ा पाक हो जाता कि फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि मदीने में मरने वालों के बड़े फजाइल हैं। जैसे कि हदीस पाक का मजमून है कि जिससे हो सके वो मदीने में मरे के मदीने में मरने वालों की मैं शफाअत फरमाऊंगा। तो इस तरह से गोया मेरे लिए जो उखरवी टेंशनें और मसाइल हैं वो अल्लाह की रहमत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से आसान हो जाते। तो ये दोनों माना में से लिया जा सकता है और ये खूबसूरत तमन्ना है और इस तरह की तमन्नाएं आशिक करते रहते हैं। मौलाना हसन रजा साहब का ही एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आप कहते हैं कि क्यों कर ना चाहें तेरी गली में हूँ मिट के खाक, क्यों कर ना चाहें तेरी गली में हूँ मिट के खाक, दुनिया में आज किसको नहीं आबरू पसंद। यानी दुनिया में आम जगह पर खाक होना कोई पसंद नहीं करता, वहां तो इज्जत नहीं जिल्लत मिलती है, कोई खाक होना कौन पसंद करे। लेकिन मदीना वो जगह है कि वहां खाक में मिलना भी इज्जत है, वहां खाक में मिलना भी आबरू है। तो कह रहे क्यों करना चाहे तेरी गली में हूं मिट के खाक, दुनिया में आज किसको नहीं आबरू पसंद, आज किसको आबरू और इज्जत पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है और मेरी इज्जत यह है कि मैं मदीने में खाक हो जाऊं। तो ये बात है आशिकों की, इश्क रसूल से जो कुछ सरोकार रखते हैं वो इन बातों को समझते हैं। अगले शेर में कहते हैं, जो ए गुल जामाए हस्ती तेरी पोशाक हो जाता, जो ए गुल जामाए हस्ती तेरी पोशाक हो जाता, तो खारे नेस्ती से क्यों उलझ के चाक हो जाता। नाज़रीन इकराम, ये जो शेर है ये बड़ा गहरे माना में है और इसका ताल्लुक पिछले शेर से है, गौर कीजिएगा। पहले कह रहे हैं जो ए गुल, ए फूल, यहां भी दो माना मुराद लिए जा सकते हैं कि ये फूल से कोई बात हो रही है। एक फूल होता है, आपने देखा होगा गुलाब का कोई फूल तसव्वुर में लाइए और वो अपनी खूबसूरती जो है वो बिखेर रहा है, जो भी उसको देख रहा है तो उस पर रश कर रहा है कि ऐसा ब्यूटीफुल रोज है ये। लेकिन फूल की खूबसूरती कितने दिन, फूल कितने दिन तक ऐसा रह सकता है, एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन बाद वो मुरझा जाता है। तो कह रहे हैं कि फूल अगर तू हमेशा की ताजगी चाहता है, अगर तू हमेशा की ताजगी चाहता है तो फिर तुझे मदीने से ताल्लुक बनाना पड़ेगा। अगर मदीने से तेरी वाबस्तगी हो जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि तेरी ताजगी एक दो दिन रहे, बल्कि अब यूं समझ के जामाए हस्ती तेरी पोशाक बन गई। जामाए हस्ती यानी जिंदगी, जामा कहते हैं लिबास को, हस्ती जिंदगी को कहते हैं। तो जिंदगी का लिबास अब तुझे हमेशा के लिए मिल गया। अब तुझे खजा से मुरझाना नहीं है, अब दो तीन दिन की तेरी लाइफ नहीं है, बल्कि जब मदीने वाले से किसी का ताल्लुक हो जाए तो उसको गुजरे हुए 1000 साल क्यों ना हो जाए, उसका रंग फिर भी लोग देख रहे होते हैं, उसकी बातें फिर भी लबों पर होती हैं। खारे नेस्ती कहते हैं, खत्म हो जाने का कांटा, नेस्ती माने अदम, खत्म हो जाना। नेस्ती वैसे हमारे यहाँ उर्दू में एक बुरे माना में इस्तेमाल होता है, नेस्ती माने सुस्ती, लेकिन असल माना नेस्ती का वो नहीं है जो लिया जाता है, नेस्ट से नेस्ती है। नेस्ट फारसी में कहते हैं अदम हो जाना, खत्म हो जाना, किसी चीज का बाकी ना रहना। खारे नेस्ती यानी खत्म हो जाने का एक कांटा हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं होता है कि यार एक वक्त आएगा ना मैं रहूंगा ना मेरा तस्किरा रहेगा, मेरी कोई बात ही नहीं होगी, मैं तो जैसे था ही नहीं। ये भी एक कहीं ना कहीं एक नफसियाती तौर पर एक खौफ और एक टेंशन होती है इंसान के दिल में। तो कह रहे हैं कि अगर तुझे मदीने से वाबस्तगी मिल जाती तो खारे नेस्ती यानी खत्म हो जाने का जो दुख है तुझे, उससे ना तू उलझता ना तेरा लिबास इससे चाक होता। लिबास से गुल का चाक होना यानी उसका खजा से मुरझा जाना, फट फटा जाना और उसका जमीन पे पड़ा होना। एक फूल था, जब तक खूबसूरत था तो यूं सजा हुआ था और जब मुरझा गया तो नीचे गिरा हुआ पड़ा है। तो ये फूल को समझा रहे हैं। और इसका अगर पिछले शेर से ताल्लुक लिया जाए और गोया अपने आप से बात कर रहे हैं, यूं समझा जाए कि गुल से मुराद अपनी जात है, कि ए गुल अपने आप को कह रहे हैं, जामाए हस्ती तेरी पोशाक हो जाता। जामाए हस्ती से मुराद यहां अब लिया जाएगा मदीने में मरना, यानी मदीने में मरना गोया जिंदगी है। मदीने में मरना तो गोया हयात अबदी है, कि अगर तुझे मदीने में मौत मिल जाती तो गोया तुझे जामाए हस्ती यानी हमेशा की जिंदगी का लिबास मिल जाता, हमेशा की पोशाक हयात मिल जाती। और फिर क्या होता, खारे नेस्ती से उलझ कर तेरा ये लिबास कभी भी फटफटा नहीं जाता, तार तार नहीं होता और तुझे फना होने का खतरा नहीं रहता, बल्कि आशिकों के लबों पे फिर तेरा तस्किरा ही तस्किरा रहता। फिर तुझे गोया हमेशा की जिंदगी मिल जाती, कि मदीने में मरना ये गम थोड़ी लाता है, ये तो खुशियां लाता है। और मदीने में मरने वाले के तो लोग रश करने वाले होते हैं, और जो खारे गमे नेस्त है यानी एक जो नफसियाती टॉर्चर एक इंसान के जहन में होता है कि अब तो मेरा ना जिक्र रहेगा ना मैं रहूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं, ना पहले था ना बाद में मैं कुछ रहा, तो इंसान चाहता है कोई उसका जिक्र करने वाला हो, कोई उसके लिए दुआई करने वाला हो। तो अगर मदीने की मौत मिल जाती तो फिर लिबास जिंदगी में ना खारे गम लगता ना उससे उलझ कर वो फटता, क्योंकि अगर लिबास पर कांटा लग जाता है तो लिबास फट जाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कांटे से दामन उलझ कर फट जाता है, चाक हो जाता है, चाक होना यानी फट जाना। तो अगर मदीने की हयात मिल जाती तो मेरी जिंदगी का जामा, मेरी जिंदगी का लिबास खारे गमे नेस्त यानी खत्म हो जाने की टेंशन से उलझ कर फटता नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी का मजा लेता। ये मदीने में मरने की बात हो रही है, और मदीने में मौत के हवाले से जितनी बातें करें उतनी कम है, इतने फजाइल इतने अशार हैं, सुभान अल्लाह। ये आशिकों का अंदाज होता है और ये बड़ी गहरी बातें होती हैं, और बड़ा ये कहिए कि मुश्किल सा भी शेर है, लेकिन अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। और हमने दो अंदाज से इसकी वजाहत आपके सामने करने की कोशिश की है। तीसरे शेर में कहते हैं, जो वो अबरे करम फिर आब रूए खाक हो जाता, जो वो अबरे करम फिर आब रूए खाक हो जाता, तो उसके दो ही छींटों में जमाना पाक हो जाता। नाज़रीन इकराम, इस शेर का भी ताल्लुक पिछले और उससे पिछले शेर से किया जा सकता है कि मदीने में मौत मिल जाती। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक आशिक को मदीने में कब्र मिल गई, बकी में उसका मदफन हो गया, उसकी तो क्या किस्मत खुल गई कि मदीने की मिट्टी उसे हासिल हो गई। फिर क्या होता है, कह रहे हैं कि फिर अगर ऐसा हो जाता कि मेरे आका मेरी तुर्बत पे कदम रंजा हो जाते, मेरी कब्र पर तशरीफ ले आते, तो कह रहे हैं वो अबरे करम यानी करम का बादल यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आबरूए खाक हो जाता, मुश्ते खाक यानी मेरा वजूद उसके पास यानी मेरी कब्र के पास अगर वो अबरे करम आ जाता, करम का बादल हुजूर अलैहि सलातु वसलाम मेरी कब्र के पास करम फरमा हो जाते तो फिर जब बादल आता है तो बारिश भी बरसती है, फिर बादल अगर बरसे तो ये तो वो बादल है कि उसके दो छींटों से, ये नबी के करम के बादल की बात हो रही है कि उसके दो छींटों से जमाना पाक हो जाए, मेरी कब्र और मेरे गुनाह और मेरी गंदगी क्या चीज है, फिर तो मेरे तो वारे नियारे हो जाते कि अगर हुजूर मेरी कब्र पे करम फरमा हो जाते तो दो छींटों में मेरा तो काम बन जाता, अरे मेरा काम क्या, यहां तो पूरे जमाने का काम बन जाता। तो ये भी पहले दूसरे तीसरे शेर की सीक्वेंस अगर समझे तो ये उसी तरह के ख्यालात और तसव्वुरात और तमन्नाओं की बातें हो रही हैं कि मैं मदीने में मर जाता तो फिर जो एक गम होता है कि कहाँ किस जंगल में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं, अरे नहीं मैं तो मदीने में हूँ, मदीने में मरने की एक खुशी मुझे मरने के बाद भी हासिल हो रही होती और मुझे खारे गमे नेस्त का डर भी नहीं होता कि अब मेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा, अरे आका के कदमों में पड़ा हूं अब तो ये आका ही पूछने वाले हैं, और फिर वो करम से कब्र पर ही आ जाते और करम का बादल बरस जाता तो दो बूंदों में मेरा काम हो जाता। तो ये तीनों अशार का खुलासा जो है वो इस एक आखिरी लाइन में जो मैंने अभी अर्ज की इसमें समझा जा सकता है। चौथे शेर में कहते हैं, हवाए दामने रंगी जो वीराने में आ जाती, हवाए दामने रंगी जो वीराने में आ जाती, लिबासे गुल में जाहिर हर खसो खाशाक हो जाता। हवाए दामने रंगी, रंगीन दामन की हवा, मुराद हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चलने से जो हवा पैदा हो रही है, लिबास की भी एक हवा होती है, कुछ ना कुछ बंदा चलता है तो आसपास कुछ ना कुछ हवा जाती है, तो महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक लिबास के दामने रंगी की हवा अगर किसी वीराने को हुजूर अलैहिस्सलाम की गुजरगा बनने की सआदत मिल जाती। अब एक इमेजिन कीजिए, एक वीराना है, कुछ भी नहीं है, खसो खाशाक इस शेर में आया है, खसो खाशाक कहते हैं इधर उधर उड़ने वाले जर्रों को, बेकार तिंकों को जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई पूछता नहीं है, ना सूंघता है, ना अपने पास रखता है, ना सजाता है, खसो खाशाक बेकार टुकड़े होते हैं। तो अगर उसी वीराने में मेरा महबूब गुजर जाता, मेरे महबूब के दामन की हवा उस वीराने को मिल जाती तो क्या होता बताए, कह रहे लिबासे गुल में जाहिर हर खसो खाशाक हो जाता, फिर उस वीराने में पड़े हुए जितने तिनके हों, जर्रे हों, बेकार टुकड़े हों, वो सब गुल के लिबास में जाहिर हो जाते, फूल बन जाते, खुशबूदार बन जाते, फिर लोग उन्हें अपने दामन में सजाते, अपने टेबल पे रखते, अपने पास रखते, उनसे खुशबू हासिल करते, क्योंकि वो फूल बन जाते, लिबासे गुल में जाहिर हो जाते, और उन खसो खाशाक की इज्जत मेरे हुजूर के हवाए दामन से बढ़ जाती। मुराद अगर इससे कुछ यूं ली जाए कि जिस जगह मेरे आका करम फरमा हो जाते तो फिर उस जगह के रंग ही कुछ और हो जाते। अब चाहे वो जगह की बात करें या जगह वाले की बात करें कि जिस जगह वाले साहिब मकान के पास हुजूर तशरीफ ले आए, फिर उसकी भी तो क्या शान होगी, उसका भी चेहरा देखने वाला होगा, उसका भी मुकद्दर चमकने वाला होगा, सुभान अल्लाह। अगले शेर में कहते हैं, लबे जा बख्श की कुर्बत हयाते जाविदान देती, लबे जा बख्श की कुर्बत हयाते जाविदान देती, अगर डोरा नफस का रेशाए मिसवाक हो जाता। अब इस कलाम का जो रदीफ और काफिया है, इसमें हो जाता की रदीफ है, अलिफ आखिर में आ रहा है, अलिफ की रदीफ है, और मिसवाक पाक खाशाक काफ जो है ये काफिया है इसका। अब आप देखेंगे कि वही अल्फाज जो काफ पे खत्म हो रहे हैं ये शेर में 19 मरतबा ये आएंगे, बल्कि 20 मरतबा मतलब में दो बार आते हैं। तो आप देखें बड़ा खूबसूरत ये शेर है, इसमें मिसवाक का लफ्ज इस्तेमाल किया है और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, लबे जां बख्श, लब कहते हैं होंठों को, जां बख्श वो होंठ कि जिनके जरिए जान बख्शी जाए, किसी की जान उसे लौटा दी जाए, उसके बेजान जिस्म में जान डाल दी जाए, गोया एक अदमुए को फिर से ताजगी बख्शने वाले वो मुबारक होंठ जो मेरे महबूब नबी की आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि वो मिसवाक शरीफ, सुभान अल्लाह, वो मिसवाक जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगी और जिसने कुर्ब मुस्तफ़ा पाया होगा, वो कैसी खूबसूरत मिसवाक होगी, वो कैसी खुशकिस्मत मिसवाक होगी, वो कैसी आलीशान लकड़ी होगी, उसके रेशे कितने कमाल के होंगे और उनका क्या मुकद्दर होगा कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों का कुर्ब मिला, हुजूर अली सलाम के मुबारक होंठों का कुर्ब उस मिसवाक को मिला। कह रहे काश वो रेशा मैं हो जाता, वो रेशा मैं बन जाता। इस शेर में कह रहे हैं कि अगर डोरा नफस का, नफस कहते हैं सांस को, सांस का डोरा, सांस का एक डोरा हमारा चल रहा है ना, एक सांस लेते हैं एक निकालते हैं, तो ये जिंदगी है। कह रहे अगर मेरी जिंदगी इसके बजाय जो ये वजूद है इसके बजाय ये रेशा हो जाता, तो अगर मेरी जिंदगी ये मिसवाक का रेशा बन जाता तो फिर क्या होता बताए? कह रहे मेरी जिंदगी तो हमेशा की जिंदगी बन जाती, हयाते जाविदा हो जाती, जाविदा हमेशा की जिंदगी, हयाते जाविदा हमेशा की जिंदगी कब मिलती? जब लबे जाँ बख्श का कुर्ब मिल जाता, उनकी कुर्बत, उनके करीब रहने का शरफ मुझे मिल जाता तो फिर हयात जाविदानी मुझे हासिल हो जाती। तो ये भी एक तखय्युल है, जाहिर है कि ये हो नहीं सकता जाहिरी तौर पर, जब एक इंसान इंसान बन गया अब वो मिसवाक का रेशा तो नहीं बनेगा, लेकिन वही वाली बात जो सहाबा इकराम अलैहि रिदवान से हमें रिवायतन मिलती है, अमीर अहले सुन्नत के कैसे कैसे अशआर हैं, खौफ खुदा के गलबे के वक्त कि काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, कब्रो हशर का सब गम खत्म हो गया होता। तो इस तरह की जो तखयलात होते हैं वो अगरचे जाहिरी तौर पर पूरे नहीं हो सकते लेकिन ये बंदे के अंदर की एक तस्वीर कशी करते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये आशिक रसूल क्या चाह रहे हैं, काश मैं हुजूर के मिसवाक का कोई रेशा ही बन जाता, हमेशा की जिंदगी पा लेता, लबे मुस्तफा का कुर्ब जो मुझे मिल गया होता। सुभान अल्लाह, लबे जाँ बख्श की कुर्बत हयाते जाविदा देती अगर डोरा नफस का, नफस के डोरे से मुराद यहाँ अपना वजूद है, अपनी जिंदगी है, क्योंकि सांस से ही तो जिंदगी है ना, अगर डोरा नफस का रेशाए मिसवाक हो जाता। सुभान अल्लाह, पांच शेर यहाँ मुकम्मल हुए, आइए मजीद कुछ अशार आपको तर्ज में सुनाते हैं फिर इंशाल्लाह उनकी वजाहत सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। हवा दिल सोख्तों को चाहिए थी उनके दामन की, इलाही सुबह महशर का गिरेबां चाक हो जाता, अगर दो बूंद पानी चश्माए रहमत से मिल जाता, मेरी नापाकियों के मैल धुलते पाक हो जाता, अगर पैवंद मलबू से पयंबर के नजर आते, तेरा ए हुल्लाए शाही कले जा चाक हो जाता, जो वो गुल सूंघ लेता फूल मुरझाया, हुआ बुलबुल बहारे ताजगी में सब चमन की नाक हो जाता, चमक जाता मुकद्दर जब दूरे दंदा की तलअत से, न क्यों रिश्ता गोहर का रेशाए मिसवाक हो जाता, अगर किस्मत से मैं उनकी गली में खाक हो जाता। आइए नाजरीन अब इन मजीद अशार की कुछ तशरी समात करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। जी मदनी चैनल के नाजरीन आपने मजीद पांच शेर तर्ज में समात किए, अब आइए कुछ उनकी वजाहत सुनते हैं। जरा तो गौर से और तवज्जो से सुनेंगे तो ये मुश्किल अशार मुश्किल नहीं रहेंगे, आसान होते चले जाएंगे। अर्ज करते हैं, हवा दिल सोख्तों को चाहिए थी उनके दामन की, हवा दिल सोख्तों को चाहिए थी उनके दामन की, इलाही सुबह महशर का गिरेबां चाक हो जाता। ये भी एक तमन्ना है, दिल सोख्ता कहते हैं दिल जले को, तो आशिक को कहते हैं, आशिक होता है ना उसका दिल महबूब की याद में जल रहा होता है। तो कह रहे हैं कि इस दिल सोख्ते के दिल की जिला, इसके दिल को अगर ताजगी चाहिए, आशिक के दिल को ठंडक चाहिए, तो जली हुई चीज को ठंडक चाहिए होती है, जली हुई चीज पे पानी डालते हैं ना, या उसे हवा वगैरह के जरिए कुछ फायदा पहुंचता है। तो कह रहे हैं कि हमें तो दिल सोख्तों को तो उनके दामन की हवा चाहिए, उनके दामन से हमारा काम बनेगा, महबूब का दामन मिल जाएगा तो ये दिल सोख्ते नहीं रहेंगे, इनके दिल जले नहीं रहेंगे। कह कह रहे इलाही सुबह महशर का गिरेबां चाक हो जाता। सुबह महशर से मुराद यहाँ यूं लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की बात हो रही है कि महशर की सुबह, मुराद ये कि सुबह भी रोशन रोशन होती है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चेहरा है पाक है ना, वो महशर को रोशन करने वाला है। महशर की जो रोशनी है वो उन्हीं के जलवों से है, उन्हीं के चेहरे से है। और कौन है जो महशर में रौनक लगाएगा? वो रौनक इन्हीं के दम से होगी। तो कह रहे हैं इनका जो गिरेबान है मुबारक है, गिरेबान अगर ये चाक हो जाए, चाक होना यानी खुल जाना, अगर ये गिरेबान खुलेगा तो जाहिर है कि एक चेहरा मुबारक भी नजर आएगा। तो ये चेहरा अगर नजर आ जाता और ये चेहरा करम फरमा देता, ये गिरेबां खुल जाता, तो एक मुबारक चेहरा पुरनूर का जलवा भी हम देख लेते और दामन की हवा भी। जाहिर है कि जब चेहरा है तो दामन भी होगा, लिबास भी होगा, गिरेबान है तो दामन भी होगा, तो दामन मुस्तफ़ा भी मिल जाता और इस तरह से इन दिल सोख्तों के दिल वो ठंडक पा जाते। तो ये भी एक खूबसूरत तमन्ना है कि जिसमें इनडायरेक्टली जलवा मुस्तफ़ा देखने की भी बात हो गई, गिरेबान मुस्तफ़ा की जियारत की भी बात हो गई, और फिर उसी के साथ दामन की हवा भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसकी भी बात कर दी। अगले शेर में कहते हैं, अगर दो बूंद पानी चश्माए रहमत से मिल जाता, अगर दो बूंद पानी चश्माए रहमत से मिल जाता, मेरी नापाकियों के मैल धुलते पाक हो जाता। दो बूंद पानी चश्माए रहमत से, चश्माए रहमत कौन सा है? अब इससे मुराद शायर ही जानते हैं कि इन्होंने क्या मुराद ली है। अब चश्मा रहमत से हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक लुआब भी ले सकते हैं कि वो भी चश्मा रहमत है, रहमत के पानी का चश्मा है। ये वो लुआब है कि जो टूटे हुए आजा को जोड़ देता है, दुखती आंख को सही कर देता है, खारी कुओं को मीठा कर देता है। तो अगर ये दो बूंद मुझे भी मिल जाते हुजूर अलैहिस्सलाम के करम से, तो मेरी नापाकियों के मैल धुल जाते, मेरी गंदगियों के मैल धुल जाते और मैं पाक हो जाता। अगले शेर में कहते हैं, अगर पैवंद मलबू से पयंबर के नजर आते, अगर पैवंद मलबू से पयंबर के नजर आते, तेरा ए हुल्लाए शाही कलेजा चाक हो जाता। पैवंद कहते हैं कपड़े के उस टुकड़े को या उस कट पीस को, उस जोड़ को जो किसी फटी हुई जगह पर लगाया जाता है। कपड़ा जब फट जाता है, लिबास पे कुछ चाकी आ जाती है, तो उस पर पैवंद लगाकर उसे रफूक वगैरह किया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बड़े बड़े घर नहीं बनाए, बड़े बड़े आलीशान लिबासों की तरफ आपने तवज्जो नहीं फरमाई। आपने बड़ी सादा और आम सी बज़ाहिर जिंदगी को पसंद फरमाया। जैसे कि अमीर अहले सुन्नत कहते ना, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिराना मदनी मदीने वाले। तो इसी तरह पैवंद मुबारक लगाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि मुबारक कपड़ों पे पैवंद लगा लिए, चाहे तो आलीशान जोड़े पहने लेकिन पैवंद वाले लिबास पहना करते थे। तो कह रहे हैं कि ये पैवंद अगरचे जाहिरी तौर पर पैवंद है, लेकिन ये ऐसा पैवंद है कि अगर ये नजर आ जाए ना, ए लिबास शाही, लिबास शाही कहते हैं बादशाह के लिबास को, तो ए लिबास शाही अगर तुझे मेरे नबी के लिबास का पैवंद नजर आ जाए तो तेरा कलेजा फट जाए। कलेजा फट जाना ये एक मुहावरा है, मुराद ये कि रोब से कांप जाए तू। लिबास शाही के रोब से लोग कांपते हैं, लेकिन लिबास शाही मेरे नबी के पैवंद वाले लिबास के सामने थर थर आ जाए। ये बात कुछ इस तरह से कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा अंदाज है। अगले शेर में कहते हैं, जो वो गुल सूंघ लेता फूल मुरझाया हुआ बुलबुल। बुलबुल से कह रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, बुलबुल बाग में उड़ने वाला एक परिंदा है जो बाग से बड़ा वाकिफ होता है, कौन सा फूल कहाँ है, कहाँ कैसी खुशबू मिलेगी। तो बुलबुल से कह रहे हैं, यहाँ आशिक भी मुराद लिया जा सकता है, जो बाग में रहता है एक आशिक है, उसको कह रहे हैं कि जो वो गुल सूंघ लेता फूल मुरझाया हुआ बुलबुल, बहारे ताजगी में सब चमन की नाक हो जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुलबुल से कह रहे हैं कि अगर मेरा फूल, मेरा गुल यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मुरझाया हुआ फूल सूंघ लेते, मुरझाया हुआ फूल अगर सूंघ लेते जिसमें कोई खुशबू नहीं रही, जिसमें कोई ताजगी नहीं रही, तो अगर हुजूर किसी मुरझाए हुए फूल को सूंघ लें, उसे नवाज दें, तो ये बुलबुल पता है क्या हो, वो फूल पूरे चमन की, पूरे बाग की इज्जत बन जाए। चमन की नाक बन जाना यानी इज्जत बन जाना, बहारे ताजगी में यानी ताजा होने में और जोबन में, अपनी खूबसूरती में वो पूरे चमन और पूरे बाग की नाक हो जाए, इज्जत बन जाए, ऐसा उसको हरा भरा कर दें। अब इसकी मुराद कुछ भी ले सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुरझाए हुए बंदे पर दस्त शफकत रख दें, जिस पर करम फरमा दें, तो फिर वो दुनिया की एक इज्जतदार हस्ती और शख्सियत बनकर रह जाए। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है। अगले शेर में कहते हैं, चमक जाता मुकद्दर जब दुरे दंदा की तलाश से, चमक जाता मुकद्दर जब दुरे दंदा की तलाश से, न क्यों रिश्ता गौहर का रेशाए मिसवाक हो जाता। सुभान अल्लाह। इस शेर में कह रहे हैं, मिसवाक की फिर बात हो रही है, इससे पहले भी एक शेर में मिसवाक की बात हुई, कि जब मिसवाक शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांतों पर फेरने की सआदत मिली, तो उसका मुकद्दर तो फिर क्यों ना चमक जाए। दुरे दंदा कहते हैं मोतियों जैसे दांतों को, दुर मोती को कहते हैं, दंदा यानी दांत, मोती जैसे दांत इन्हें कहते हैं दुरे दंदा, तलात यानी रोशनी। तो मुकद्दर से जब मिसवाक को हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के दांतों पर फिरने की सआदत मिली, तो फिर उसको मोतियों जैसे दांतों से मस होने की सआदत पाने के बाद उसका रिश्ता गौहर से क्यों ना हो जाता। गौहर कहते मोती को, फिर वो रेशा मिसवाक ना रहता, वो मिसवाक का रेशा आम सा ना रहता, बल्कि वो मोती बन जाता, क्योंकि वो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के दांतों पर मस हो चुका। तो अब ये रेशा रेशा नहीं है, ये भी मोती बन गया है। मेरे आका तो जिसे नवाजते हैं फिर ऐसा नवाजते हैं कि वो फिर हमेशा की ताजगी पा लेता है। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर 10 शेर मुकम्मल हुए, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस कलाम के बकिया 9 अशार अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बे ठिकानों को ठिकाना मिल गया।